पृष्ठ संख्या 306, अध्याय 20। अध्याय शीर्षक है सर्वधर्म समन्वय या विश्व धर्म की संभावना, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिलीजन्स आर पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्ल्ड रिलीजन। आज विश्व सिमट कर एक हो रहा है, इसका कारण है वैज्ञानिक प्रगति। विज्ञान के विकास से राष्ट्रों की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सीमाएं खंड खंड हो रही हैं और विश्व एकता की ओर बढ़ रहा है। परंतु विचारक गण विश्व की ऐसी एकता से संतुष्ट नहीं जान पड़ते। यह एकता बाह्य है, आंतरिक एकता के बिना विश्व की एकता संभव ही नहीं है। कुछ भी हो, इस बाह्य एकता से मनुष्य आदान प्रदान की स्थिति में तो आ ही गया है, और वह अपने को किसी विशेष देश, धर्म और संस्कृति तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। मनुष्य में विचारों की उदारता परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में विचारक विश्व की आंतरिक एकता की बात सोचने लगे हैं। उनके अनुसार आंतरिक एकता आध्यात्मिक आधार पर ही स्थापित की जा सकती है। धर्म ही एक ऐसा आधार है जो विश्व की एकता की जंजीर को आंतरिक रूप में दृढ़ करने के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है। अर्थात जब तक विश्व के विभिन्न धर्मों में समन्वय नहीं होता, विश्व में एक धर्म नहीं माना जाता, तब तक न विश्व की बाह्य एकता दृढ़ हो सकती है और न आंतरिक एकता ही संभव है। प्रश्न है, क्या धार्मिक एकता या सर्वधर्म समन्वय संभव है? जिस प्रकार विधान विश्व के एकत्व की खोज में लीन है, उसी प्रकार दर्शन और धर्म दर्शन भी एकत्व के ही पक्षपाती हैं। प्रथम स्तर पर दर्शन विश्व की मूल सत्ता के रूप में एक तत्व की ही खोज करता है। द्वितीय स्तर पर वही कार्य धर्म दर्शन धर्म के आधार पर करना चाहता है। परंतु धर्म की विविधता, धर्मानुयायियों की एक निष्ठता और धर्म संस्थापकों की धार्मिक अनुभूतियों की विभिन्नता आज तक यही सिद्ध करती आई है कि सर्वधर्म समन्वय कठिन और संभव नहीं प्रतीत होता। विभिन्न धर्म के अनुयायियों के बीच दंगे और झगड़े इसीलिए देखे जाते हैं कि एक की दूसरे के प्रति अनास्था है। प्रत्येक धर्मानुयायी अपने धर्म के देवी देवता के प्रति ही आस्थावान होता है। अतः सिद्ध है कि एक दूसरे में अनास्था प्रकट करना स्वाभाविक है। एक दूसरा कारण यह भी है कि व्यक्ति धर्म का चुनाव अपनी मनोवृत्ति, संस्कार, शिक्षा और सांस्कृतिक पर्यावरण के आधार पर कर सकता है। यदि धर्म व्यक्ति पर निर्भर करता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के अनुसार चाहे जिस धर्म को चुनेगा और उसी के प्रति आस्थावान होगा। एक विश्वजनीन धर्म की स्थापना कैसे संभव है? पृष्ठ संख्या 307। यही नहीं, जब एक ही देश में विभिन्न धर्म हैं और उस देश में ही एक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, उन धर्मों में समन्वय नहीं हो सकता, तो सर्वधर्म समन्वय की कल्पना ही व्यर्थ प्रतीत होती है। हिंदुओं में वैष्णव शैव और शक्त की लड़ाई प्रसिद्ध है। ईसाई धर्म में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट का संघर्ष सर्वविदित है। मुसलमानों में शिया सुन्नी की लड़ाई, बौद्धों के हीनयान और महायान तथा जैनियों के श्वेतांबर तथा दिगंबर का मत वैभिन्न किसी से छिपा नहीं है, परंतु फिर भी धर्म दार्शनिक और विचारक धर्म समन्वय की चर्चा करते आए हैं। धर्म समन्वय की बात चाहे वैचारिक स्तर पर ही क्यों न हो, धर्मों के पारस्परिक विवाद और झगड़ों के कारण ही संभवतः चल पड़ी है। इस दिशा में पाश्चात्य और प्राच्य विचारक निष्ठापूर्वक लगे रहे हैं। प्रमुख रूप में भारत में वैदिक काल से अब तक धर्म समन्वय का प्रयास महत्वपूर्ण कहा जाता है। गीता का महत्व भारतीय धर्म शास्त्रों का प्रयास महत्वपूर्ण कहा जाता है। गीता का महत्व भारतीय धर्म शास्त्रों में सर्वोपरि माना जाता है। गीता का यह उद्घोष सर्वधर्म समन्वय का सच्चा रूप है। सर्वधर्मा न परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, या यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मई पश्यति। श्रद्धा से युक्त सकामी भक्त अज्ञानता के कारण यदि दूसरे देवताओं को पूजते हैं तब भी वे ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं। गीता की ऐसी धारणा सर्वधर्म समन्वय का सर्वोत्कृष्ट रूप है। आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में धर्मों के आपसी संघर्ष को देखकर अन्य भारतीय चिंतक, साधक और दार्शनिक भी धर्म समन्वय की चर्चा करते हैं, जिनका उल्लेख और परीक्षण करने के पहले अन्य धर्मों में सर्वधर्म समन्वय का क्या रूप है इसे देख लेना अच्छा होगा। अगला शीर्षक है ईसाई धर्म। बाइबिल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में यह मिलता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। संत पाल ने भी कहा है, एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अब शीर्षक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी सर्वधर्म समन्वयकारी उक्तियां मिलती हैं। कुरान में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह तुम्हारा ईश्वर सब चीजों को बनाने वाला है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर, हरे हॉकिंग, अंडरहिल तथा प्राच्य धार्मिक महापुरुष श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, डॉक्टर भगवान दास तथा डॉक्टर राधा कृष्णन आदि विचारकों ने सर्वधर्म समन्वय पर गंभीरता से विचार किया है। हम देखेंगे कि इन विचारकों की समन्वय की धारणा कहाँ तक उचित और संभव बताई जा सकती है। अब अगला शीर्षक है विश्व धर्म या सर्वधर्म समन्वय का स्वरूप। विश्व में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। इन धर्मों के बीच एकता स्थापित करना ही समन्वय है। तुलनात्मक धर्म के अध्ययनों से यही ज्ञात हुआ है कि सभी धर्मों में धर्म के सामान्य तत्व विद्यमान हैं। धर्म दर्शन धर्मों के दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन से यह पता चलाने का प्रयास करता है कि क्या इन विभिन्न धर्मों से एकता स्थापित की जा सकती है। निश्चित है कि सभी धर्मों को एक में मिला देना सर्वधर्म समन्वय नहीं है, बल्कि यह देखना है कि क्या तर्क संगत ढंग से धर्मों में एकता स्थापित की जा सकती है। अतः धर्म समन्वय में तर्क संगतता ढूंढना ही धर्म दर्शन का कार्य है। तार्किक रूप में कोई ऐसा आधार देखना है जिसके आधार पर यह सोचा जा सके कि किस प्रकार धर्मों में एकता स्थापित हो सकती है। पृष्ठ संख्या 308। क्या किसी विशिष्ट धर्म में ही सभी धर्मों का विलयन कर दिया जा सकता है, या थोड़ा थोड़ा अंश सभी धर्मों का ले लिया जाए और एक विश्व जनीन धर्म बनाया जाए। निश्चित है कि सर्वधर्म समन्वय के लिए ये क्रियाएं संभव नहीं हैं, क्योंकि सभी धर्मा अनुयायियों में मेल होने के बदले और भी लड़ाइयां प्रारंभ हो जाएंगी। सभी अपने ही धर्मों को विश्वजनीन धर्म मानने का दावा करते हैं। अतः सर्वधर्म समन्वय का अर्थ धर्मों की एकता में तर्क संगतता ढूंढना है। अब हमें यह देखना है कि क्या सभी धर्मों के मध्य तर्क संगत एकता स्थापित की जा सकती है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत हैं, जिनके आधार पर सर्वधर्म समन्वय का प्रयास किया गया है। इसमें पहला बिंदु क है, सामान्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मनुष्य एक सामान्य विश्व में रहते हैं, सामान्य प्रवृत्ति के हैं और सभी धर्मों में एक ही सामान्य तत्व वर्तमान है। इसलिए विश्व में एक सामान्य धर्म की स्थापना हो सकती है। इस मत के पोषक NFS हरे कहे जाते हैं। सामान्यता के आधार पर कुछ लोग अपने ही धर्म विशेष को एकमात्र सत्य और विश्व धर्म होने का तर्क देते हैं। धर्म के इस एकाधिकारवादी दृष्टिकोण को डॉक्टर मसीह एकाधिपत्य सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार एक ही धर्म सत्य है, शेष असत्य है। अब शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव प्रकृति की सामान्यता सिद्ध नहीं होती। मनोविज्ञान यह सिद्ध करता है कि मनुष्य विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों और मानसिक बनावटों के कारण एक समान नहीं है। इसलिए मानव प्रकृति की सामान्यता के आधार पर एक सामान्य या विश्वजनीन धर्म की स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरा है, मानव प्रकृति की विभिन्नता से आराध्य सत्ता एक नहीं हो सकती। यह वास्तविकता है कि विश्व में विभिन्न धर्म हैं। सभी धर्म अपने को सत्य कहते हैं। किसी एक धर्म को ही सत्य और सामान्य कहना तथा अन्य को असत्य ठहराना वास्तविकता को झुठलाना है। फिर किसी धर्म को असत्य कहने का हमारे पास कोई आधार भी नहीं है। निसंदेह आदिम धर्म में प्रेतात्माओं की पूजा होती है, फिर भी उसमें सत्यांश विद्यमान है और धर्म की मूल धारणा तो उसमें अंतर्निहित मानी जा सकती है। अतः इस आधार पर भी एक सामान्य धर्म की स्थापना नहीं की जा सकती। बिंदु चौथा है, यदि सभी धर्म सत्य हैं तो एक सामान्य धर्म कैसे? सभी धर्म अपनी सत्यता के आधार पर सामान्यता की होड़ में लड़ सकते हैं। अतः धर्मों के संघर्ष से धर्मों की एकता के स्थान पर धार्मिक विप्लव खड़ा हो सकता है। अतः सामान्यता का सिद्धांत तर्क संगत नहीं है। अब बिंदु ख है, एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी धर्म असत्य नहीं माने जा सकते, उनमें आंशिक सत्यता स्वीकार की जा सकती है। सभी धर्मों की आंशिक सत्यता के आधार पर एक रूप सामान्य धर्म की स्थापना की जा सकती है, जिसमें समस्त धर्मों की आंशिक सत्यता समाहित रहती है। पृष्ठ संख्या 309। डॉक्टर मसीह ने इस सिद्धांत का नामकरण एक शिलात्मक सिद्धांत किया है। इस सिद्धांत के पोषक फरे तथा हॉकिंग माने जाते हैं। इन लोगों के अनुसार ईसाई धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों के आंशिक सत्य निहित हैं। इसमें एक ही सामान्य ईश्वर की उपासना की जाती है, जो सभी धर्मों में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। चूंकि सभी धर्मों में प्रेम और सच्चाई को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है और ईसाई धर्म में ये दोनों तत्व वर्तमान हैं, इसलिए इसे सामान्य धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हॉकिंग ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि केवल यही धर्म वैज्ञानिक ठहराया जा सकता है तथा इसमें गहराई और व्यापकता भी है। यही नहीं, इस धर्म से आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का मेल स्थापित किया जा सकता है। इसलिए एकमात्र यही सामान्य धर्म स्वीकार किया जा सकता है। अब शीर्षक है आलोचना। यह सिद्धांत भी तर्क संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जिस प्रकार फरे और हॉकिंग ईसाई धर्म को वैज्ञानिक और व्यापक सिद्ध करने का दावा करते हैं, उसी प्रकार अन्य धर्म भी अपने को वैसा ही सिद्ध करते हैं। फिर क्यों ईसाई धर्म को ही सामान्य धर्म के रूप में माना जाए? दूसरे मानव प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि ईसाई धर्म ही सबकी प्रकृति के अनुकूल होगा? तीसरे, क्या इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न अनुयायियों में इस बात के लिए लड़ाई नहीं हो सकती कि मेरा ही धर्म सामान्य धर्म के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? अब बिंदु ग है, एक तत्ववादी सिद्धांत। इसके अनुसार एक तत्व परमात्म तत्व सभी धर्मों में सामान्यतया पाया जाता है। इस आधार पर धर्मों में एकता स्थापित की जा सकती है। इस मत के समर्थक डॉक्टर राधा कृष्णन एवं डॉक्टर भगवान दास तथा अन्य भारतीय चिंतक माने जाते हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म में विश्वव्यापी धर्म के सभी लक्षणों को प्राप्त किया है। हिंदू धर्म ही ऐसा है जो सभी धर्मों को स्वीकार करता है। अब अगला शीर्षक है डॉक्टर राधा कृष्णन की सर्वधर्म समन्वय की धारणा। डॉक्टर राधा कृष्णन एक परम तत्व में विश्वास करते हैं। विश्व के सभी धर्म किसी न किसी रूप में इसी परम तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी धर्मों में इसी की पूजा विभिन्न रूपों में होती है। धर्मों में जो मतभेद देखा जाता है, वह उसी एक तत्व को न पहचानने के कारण ही है। वस्तुतः सभी में एक सामान्य तत्व विद्यमान है। पुनः वे ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन पुस्तक में लिखते हैं, एक सामान्य विषय की ओर सभी धर्म सहयोगी की तरह बढ़ रहे हैं। पूजा की पद्धतियाँ चाहे भिन्न हो, परंतु अनुभूतियाँ एक ही तत्व को व्यक्त करती हैं, एक ही सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने हिंदू धर्म को विश्वव्यापी धर्म के रूप में पहचाना है। उनके अनुसार इसमें अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता का भाव है, इसमें व्यापकता है, इसमें सर्वोच्च आत्म तत्व पर ही जोर दिया गया है, जो सभी धर्मों में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार सभी धर्म मूल रूप में समान हैं। उन्होंने धर्मों की एकता अन्य कई आधारों पर स्वीकार की है। यदि मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो प्रत्येक धर्म सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, आत्मसंयम को महत्व देते हैं। प्रत्येक धर्म में सत्य की खोज की जाती है। इसमें भी धर्मों की एकता प्रकट होती है। पृष्ठ संख्या 310। धर्मों की क्रियाविधि में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। इससे भी धर्म समन्वय प्रकट होता है। ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट में उनका कथन है कि विभिन्न धर्म अब एक साथ हो रहे हैं। यदि ये विभिन्न धर्म संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं हैं, तो उनको ग्रहणशीलता का भाव विकसित करना चाहिए, जिससे पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों का उन्मूलन हो और वे एक दूसरे के साथ हो जाएं, क्योंकि सभी एक ही सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार सर्वधर्म समन्वय विश्व के लिए अनिवार्य है। अब शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला है, डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार एक ही परम तत्व ही सत्य है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति को ही सर्वोपरि माना गया है। राधा कृष्णन उसी को एक तत्व मानते हैं। प्रश्न होता है, क्या यही तत्व सभी धर्मों में विद्यमान है और उसी की उपासना की जाती है? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। ब्रह्म जब उपास नहीं, तो सभी में एक तत्व कैसे स्वीकार किया जा सकता है? दूसरा बिंदु है, हिंदू धर्म को ही विश्व धर्म क्यों माना जाए? क्या ईसाई, इस्लाम या अन्य धर्म इसका दावा नहीं कर सकते? बिंदु तीसरा है, इनके तर्कों से यही सिद्ध होता है कि धर्म वही सत्य है जिनमें एक परम तत्व या सर्वोच्च आत्मा को स्वीकार किया गया हो। यदि यही बात सत्य है, तो बहुत से धर्मों में यह तत्व नहीं है, तो क्या वे धर्म असत्य हैं? किसी धर्म को असत्य कहना क्या असहिष्णुता का परिचय देना नहीं है? बिंदु चौथा है, डॉक्टर मसीह की यह आलोचना विचारणीय है कि यदि कहा जाए कि विभिन्न धर्म एक ही धार्मिक तत्व को विभिन्न नाम से पुकारते हैं तो इसका अर्थ है कि इन धर्मों में अंतर्निहित दृष्टियां अवास्तविक हैं। अब यहाँ कई प्रश्न होते हैं। यदि धार्मिक दृष्टियां अवास्तविक हैं तो सामंजस्य से लाभ ही क्या होगा? इनसे मानव जाति का विकास कैसे होगा तथा धर्म विशेष का संरक्षण कैसे होगा? डॉक्टर मसीह का ठीक ही कहना है कि यदि ईसाई और इस्लाम धर्म से ईसा तथा मुहम्मद साहब की जीवनी, शिक्षा और बाइबिल तथा कुरान को हटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अतः यदि सभी धर्मों की दृष्टियां वास्तविक मान ली जाती हैं तो तर्कसंगत ढंग से समझौता नहीं होगा, और यदि उनको आकस्मिक मानकर ठुकरा दें तो सभी धर्मों का विलयन हो जाएगा। अतः डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार तर्कसंगत रूप में सर्वधर्म समन्वय नहीं कहा जा सकता। अब शीर्षक है डॉक्टर भगवान दास का सर्वधर्म समन्वय। डॉक्टर भगवान दास ने सर्वधर्म समन्वय का स्तुत्य प्रयास किया है। इन्होंने सभी धर्मों में एक तत्व को खोज निकालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ईश्वर ही ऐसा तत्व है जिसको सभी धर्म स्वीकार करते हैं। अपनी पुस्तक दी एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस में उन्होंने धार्मिक एकता को विभिन्न रूपों में सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार जो यह मानते हैं कि धर्मों में एकता संभव नहीं हो सकती या यह एकता कल्पना मात्र है अथवा धर्म के द्वारा लोगों में संगठन नहीं पैदा किया जा सकता, कोरा भ्रम और निराशापूर्ण विचार है। पृष्ठ संख्या 311। उन्होंने समन्वय नामक पुस्तक में अपने विचार प्रकट किए हैं। कोई नमाज के नाम से, कोई संध्या के नाम से, कोई प्रेयर के नाम से उसी एक परमात्मा अल्लाह गॉड को याद करते हैं। यह बात सभी मजहब वाले मानते हैं कि खुदा एक है। सबसे बड़ा खुदा अल्लाह अकबर, महादेव परम ईश्वर, आत्मा पर ब्रह्म, इन सब का अर्थ एक ही है। अगर एक मजहब वाले ओम कहते हैं तो दूसरे आमी और तीसरे एमेन तीनों एक ही चीज है और एक ही मतलब रखते हैं। सभी धर्मों के उसूल एक हैं। जैसे सूफियों ने कहा है, फकत तकावत है नाम ही का, दरअसल सब एक ही हैं यारो, जो आबी साफी के मौज में है उसी का जलवा हवाब में है। इसी तरह उपनिषदों में भी यह कहा गया है, गवाम अनेक वर्णानाम क्षिरस्य आस्ति एक वर्णता तथैव सर्वधर्माणाम तत्वस्य अपि एक वस्तुता। गाय बहुत रंग की पर दूध सबका सफेद श्वेत ही, वैसे धर्म बहुत भाषा बहुत, असल बात तत्व वस्तु एक ही है। इसी पुस्तक में आगे अनेक ढंग से भगवान दास जी ने समन्वय के संबंध में वक्तव्य दिया है। वे विभिन्न धर्मों के बीच समानता उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार विभिन्न रुचि, व्यवसाय और वेशभूषा वाले व्यक्तियों के बीच भी समानता देखी जा सकती है। विभिन्न देशों में एकता तभी संभव है जब धर्मों के बीच एकता स्थापित की जाए। उनका कथन है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल चाहे जो हो, परंतु वे अंततः गिरती हैं जाकर समुद्र में ही, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों से चलता हुआ व्यक्ति अंत में ईश्वर को ही प्राप्त करता है। शीर्षक है आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, वस्तुतः डॉक्टर भगवान दास का सर्वधर्म समन्वय का प्रयास तार्किक आधार पर खरा नहीं उतरता। इनके अनुसार ईश्वर ही एक तत्व है जो सभी धर्मों में निहित है, परंतु अलग अलग धर्मों का ईश्वर अलग अलग है। जैसे ईसाई का ईश्वर प्रेम स्वरूप है और इस्लाम का ईश्वर न्याय स्वरूप है। इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्थान ही नहीं, फिर कैसे कहा जा सकता है कि सभी धर्मों में ईश्वर एक ही मात्र तत्व है। दूसरा बिंदु है, उन्होंने ईसाई, सूफी, वैष्णव, शैव आदि विभिन्न मतों का अवलोकन करके समन्वय का प्रयास किया है, परंतु इनमें से कोई रहस्यवादी धर्म है, कोई उपासना प्रधान। इसके अतिरिक्त इनका लक्ष्य भी अलग अलग है। कैसे विभिन्न लक्ष्यों की ओर जाने वाले धर्मों को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। तीसरा है, यदि यह भी मान लिया जाए कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक है जिस पर विभिन्न मार्गों से जाया जा सकता है, जैसे नदियां विभिन्न मार्गों से समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो इतना तो निश्चित हो गया कि धर्म अनेक है। धर्म की अनेकता मानव प्रकृति की विभिन्नता के कारण भी अनिवार्य है, क्योंकि वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही धर्मानुसरण करता है। पृष्ठ संख्या 312। धर्म और लक्ष्य की अनेकता के कारण भी एक तत्व का सिद्धांत सही नहीं प्रतीत होता। डॉक्टर राधा कृष्णन और डॉक्टर भगवान दास के मतों की आलोचना से यह भी स्पष्ट होता है कि कोई निरपेक्ष धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता, सभी धर्म सापेक्ष हैं। अब अगला शीर्षक है बिंदु घ, सापेक्षवादी सिद्धांत। अंत में हमें इस मत को स्वीकार करना पड़ेगा कि धर्म अनेक और सापेक्ष हैं। किसी एक ही धर्म को सत्य नहीं माना जा सकता। धर्म को विज्ञान की तरह निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक निष्कर्ष वैज्ञानिक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, परंतु धर्म इसके विपरीत व्यक्ति की रुचि, शिक्षा दीक्षा, संस्कार, अवृत्ति पर निर्भर करता है। धर्म व्यक्तिक दृष्टिकोण है, व्यक्ति के अनुसार ही उसका आराध्य देव भी होगा। व्यक्ति की अनेकता पर ही धर्म की अनेकता निर्भर है। इस प्रसंग में श्री रामकृष्ण की उक्ति सत्य चरितार्थ होती है, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। धर्मों की अनेकता में एकता देखने की भावना या दृष्टि आवश्यक है। यदि धर्म अनेक है तो उनमें संघर्ष होगा ही, फिर समन्वय कैसे होगा? इसके उत्तर में सापेक्षवादी दृष्टिकोण ही रखना होगा। इसका बोध तभी होगा जब धर्मों की अनेकता में एकता देख सकें और उसी के आधार पर सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रख सकें। श्री रामकृष्ण ने इसी को एक उदाहरण द्वारा समझाया है। एक व्यक्ति ने जंगल में पेड़ पर सुंदर लाल कीड़ा देखा। दूसरे से कहने पर जवाब मिला कि वह कीड़ा लाल नहीं हरा है, मैंने भी देखा है। तीसरे ने कहा, न लाल न हरा, वह तो पीला है, किसी ने भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी रंग का भी बताया। फिर सभी मिलकर उस कीड़े को देखने गए। वहाँ जो व्यक्ति रहता था और जिसने उसको देखा है, पूछने पर बताया कि मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ, उस कीड़े को मैं खूब पहचानता हूँ, तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है, वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी और जाने कितने रंग बदलता है। फिर कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं, अर्थात जिसे धर्म का वास्तविक ज्ञान और महत्व मालूम है, वही धर्मों की सत्यता जान सकता है। जो पेड़ के नीचे रहता है, वही जानता है कि कीड़े के कितने रंग हैं। दूसरे लोग तो केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। अब अगला शीर्षक है, धर्म समन्वय सापेक्षवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अंतर्गत शीर्षक है, श्री राम कृष्ण और स्वामी विवेकानंद द्वारा सर्वधर्म समन्वय। सभी धर्मों के प्रति निष्ठा भाव, सहानुभूति, सहभागिता, समदर्शिता और आदर प्रकट करना सर्वधर्म समन्वय के लिए आवश्यक है। श्री राम कृष्ण ने अपनी धार्मिक साधना से यह सिद्ध करके प्रदर्शित कर दिया है। उन्होंने स्वतः ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म तथा अन्यान्य हिंदू धर्मों की साधनाएं की। उसी से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जितने मत उतने पथ, सभी धर्म सत्य है, धर्म ही ईश्वर नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों का सहारा लेकर ईश्वर के पास जाया जाता है। नदियाँ भिन्न दिशाओं से आती हैं, परंतु सभी समुद्र में जा गिरती हैं। वहाँ पर सभी एक हैं, सभी धर्मों के लोग एक ही को पुकार रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर, कोई राम, कोई हरि, कोई अल्लाह, कोई ब्रह्म। नाम अलग अलग हैं, परंतु वस्तु एक ही है। एक तालाब में चार घाट हैं, एक घाट से हिंदू जल पी रहे हैं, वे कह रहे हैं जल, दूसरे घाट में मुसलमान कह रहे हैं पानी, तीसरे घाट में ईसाई कह रहे हैं वाटर, चौथे घाट में कुछ आदमी कह रहे हैं अकुआ। वस्तु एक ही है जल, पर नाम अलग अलग है। पृष्ठ संख्या 313। अतएव झगड़ा करने का क्या काम, सभी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं और सभी उन्हीं के पास जाएंगे। किसी के पूछने पर यदि दूसरे धर्म में गलत बातें हों तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, गलत बातें भला किस धर्म में नहीं हैं। सभी कहते हैं मेरी घड़ी सही चल रही है, परंतु कोई भी घड़ी बिल्कुल सही नहीं चलती। सभी घड़ियों को बीच बीच में मिलाना पड़ता है। गलत बातें किस धर्म में नहीं हैं, और यदि गलत बातें रही भी, परंतु यदि आंतरिकता हो, यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारो तो अवश्य ही सुनेंगे। धर्मों के प्रति यह दृष्टिकोण सापेक्षवादी है। सभी धर्म सत्य है, उनके प्रति निष्ठा का भाव और धर्म तत्व में आंतरिकता की आवश्यकता है। यह कहना कि मेरा ही धर्म ठीक है, अन्य धर्म गलत हैं, ईश्वर मुझ पर ही कृपा करेगा ठीक नहीं है। आंतरिक प्रेम होने पर ईश्वर सबका है। स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय का श्लाघनीय एवं स्तुत्य प्रयास किया है। उनका भी दृष्टिकोण सापेक्षवादी है। यह बात तार्किक रूप से भी सिद्ध होती है। शिकागो धर्म महासभा में उनके उद्गार इस प्रकार हैं। यदि कोई महाशय यह आशा करे कि यह एकता इन धर्मों से किसी एक की विजय और बाकी अन्य सबके नाश से स्थापित होगी, तो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई, तुम्हारी यह आशा असंभव है। न तो ईसाई को हिंदू या बौद्ध होना पड़ेगा और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही। पर हाँ, प्रत्येक मत के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य मतों को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और साथ ही अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करता हुआ अपनी प्रकृति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद ने समन्वयकारी दृष्टिकोण को ही स्वाभाविक माना है। सत्य सदा सार्वभौमिक रहा है। यदि केवल मेरे ही हाथ में 6 उंगलियां हो और तुम सबके हाथ में 5, तो तुम यह न सोचोगे कि मेरा हाथ प्रकृति का सच्चा अभिप्राय है, प्रत्युत यह समझोगे कि वह अस्वाभाविक और एक रोग विशेष है। इसी प्रकार धर्म के संबंध में भी यदि केवल एक ही धर्म सत्य होवें और बाकी सब असत्य, तो तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि वह एक धर्म कोई रोग विशेष है। यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म सत्य होंगे ही। अब अगला शीर्षक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समन्वय के लिए धर्मों के प्रति आदर, निष्ठा और सहभागिता पर जोर दिया है। उनके अनुसार भी सभी धर्म सत्य है। उनके प्रति सहानुभूति और अपनत्व की भावना आवश्यक है। उन्होंने धर्म का अर्थ उस धर्म से लिया है जो सभी धर्मों को समाहित करे, जो सृष्टिकर्ता का साक्षात्कार कराए। ऐसा धर्म सब धर्मों से ऊपर है। वह सबकी दृष्टि का परिवर्तन करता है। गांधी जी ने सभी धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में आवश्यक रूप में एकता है। यदि मनुष्य सच्चे अर्थों में धार्मिक है तो कोई भी धर्म एक दूसरे का बाधक नहीं है। यही कारण है कि वे ईसाई, इस्लाम, पारसी तथा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में एक समान विश्वास रखते थे, उनका पाठ करते थे और उनके सिद्धांतों पर चलने का आग्रह करते थे। उनका कहना है, मैं जैसा विश्वास गीता में रखता हूँ, वैसा ही बाइबिल में भी। मैं अपने धर्म के समान ही विश्व के सभी धर्मों में विश्वास रखता हूँ। किसी विशेष धर्म का उसके ही अनुयायियों द्वारा मजाक उड़ाते देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। मनुष्य धार्मिक अज्ञानता के कारण ही एक दूसरे का विरोध करता है। सच्चा धर्म सभी धर्मों के प्रति निष्ठा के भाव से ही उत्पन्न हो सकता है। इसी से मानव को उत्थान और सर्वमुक्ति का पाठ सिखाया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 314। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सभी धर्मों के प्रति आदर भाव, धार्मिक सौहार्द तथा सहभागिता के आधार पर ही सर्वधर्म समन्वय किया जा सकता है। अब अगला शीर्षक है धर्म का भविष्य। कुछ विचारकों की यह धारणा है कि सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने धर्म के समान सभी धर्मों के प्रति उदार हो और उनमें भाग ले सके। धार्मिक कलह और संघर्ष तब तक बने ही रहेंगे जब तक कि इन परंपरावादी धर्मों का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि युग के अनुकूल इस प्रजातांत्रिक स्थिति में एक विश्वजनीन धर्म माना जाए जो सबके अनुकूल हो, और वह है मानवतावादी धर्म, जिसमें मानव मूल्यों को दृष्टि में रखकर मानवता की सेवा भावना निहित है। यही भविष्य में विश्व का धर्म स्वीकृत किया जा सकता है, परंतु हमारे दृष्टिकोण से यह असंभव की संभावना है। धर्म के मूल में ही उपासना, ज्ञान, आस्था निहित है। धर्मों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण ही मानवतावादी धर्म है। ईश्वर विहीन मानवता संभव नहीं है। सारांश में सापेक्षवादी दृष्टिकोण धर्मों के प्रति आदर, निष्ठा तथा सहभागिता ही वह बिंदु है जहां धर्मों की एकता या समन्वय संभव है। विश्व धर्म की संभावना इसी सापेक्षवादी दृष्टिकोण में ही देखी जा सकती है। किसी एक धर्म को या सभी धर्मों के समुच्चय से कोई नया विश्व धर्म नहीं बन सकता। फिर भी कुछ लोग विश्व धर्म के विकल्प के रूप में मानवतावाद को ही उपयुक्त मानते हैं, और उनके अनुसार मानवतावाद विश्व धर्म के रूप में अपना स्थान बना सकता। इसके लिए अनेक तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। अतः आवश्यक है कि मानवतावाद की विस्तृत मीमांसा की जाए। अध्याय 20 समाप्त।